अगर इन खबरों को सच माना जाए कि ऑस्ट्रेलियन अधिकारियों ने लोगों की कबूतरबाजी करने वालों को यानी पीपल स्मगलर्स को पैसे देकर एक शरण चाहने वाले लोगों से भरी बोट को वापस इंडोनेशिया भेजा है तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानूनों का उल्लंघन किया होगा। इस सिलसिले में एक सेनेट जांच सुनवाई भी हुई। फेडरल सरकार द्वारा उठाए इस कदम यानी जिस तरह से इस मामले की निगरानी हो रही है इस पर कानून विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि इससे विदेशी कानूनी अधिकारों के अंतर्गत कस्टम अधिकारी खतरे में पड़ सकते हैं। तो इसी पर एक रिपोर्ट। पहली बार पिछले साल जून 2015 में इस आरोप की बात मीडिया में आई कि ऑस्ट्रेलिया ने लोगों की कबूतरबाजी करने वाले लोगों को 30,000 अमरीकी डॉलर देकर एक बोट को वापस भेजा। रिपोर्ट्स के अनुसार ये बोट शरण चाहने वालों को न्यूजीलैंड ले जा रही थी। इंडोनेशियन पुलिस की तरफ से ये भी क्लेम आया कि कथित तौर पर एक बोट जिस पर 65 लोग सवार थे वो इंडोनेशिया में वापस भेजी गई और कथित तौर पर ऑस्ट्रेलियन अधिकारियों द्वारा इस बोट के 6 काम करने वाले जत्थे में से हर एक को हजारों डॉलर का भुगतान किया गया। शुरू में उस समय के प्रधानमंत्री पद पर टोनी एबट और विदेश मंत्री जूली विशप ने इन रिपोर्ट्स का खंडन किया और अब सीनियर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशन सॉवरेन बॉर्डर अधिकारियों ने एक सेनेट जांच के प्रश्नों पर उत्तर देने से इनकार किया है। ऑपरेशन सॉवरेन बॉर्डर कमांडर मेजर जनरल एंड्रयू बॉटरेल ने जनहित का हवाला देते हुए इस आरोप पर कुछ भी कहने में असमर्थता जताई कि किसी भी तरह की जानकारी देने से देश की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है या फिर ये देश के हित में नुकसानकारी हो सकता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी माइक पिजुलियो ने भी कुछ अधिक नहीं कहा जब ग्रीन सेनेटर सारा हैंसन यंग ने सवाल किए।
Do you have a budget for paying people smugglers?
The premise of your question, and perhaps you were trying to catch me on the hop, but maybe I was too alert to it, Senator. The premise of the question would involve me answering the very thing that we're not able to comment on. We have a budget to do the things we need to do.
Human Rights Advocacy Group, Amnesty International, का कहना है कि उन्होंने उन लोगों से बात की है जो इस बोट पर सवार थे, जो वेस्ट पपुआ में जाकर टकराई थी और जिन्होंने लोगों की स्मगलिंग करने वालों को ऑस्ट्रेलियन अधिकारियों द्वारा इस कथित भुगतान की बात को समर्थन दिया है। सेनेट जांच के समक्ष क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में टीसी बैंड स्कूल ऑफ लॉ के एंथनी कैसिमेटिस भी प्रस्तुत हुए। उन्होंने तथा इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट कैथरीन ड्रमन ने ऑस्ट्रेलियन कानून के तहत इस तरह के संभवनीय और तनाव भरे आचार व्यवहार के प्रति चिंता प्रकट की।
In terms of the criminal code provisions, in particular also in respect of constitutional concerns, in terms of the legality of conduct, we would raise specifically the issue of constitutional writs and the applicability of those writs to such conduct where it is unlawful, which would be unaffected by the relevant legislation. We also raise concerns about potential tortious liability in respect of the alleged payments in terms of abuse of public office, and we believe that the immunities under the relevant legislation do not necessarily apply.
वीडियो लिंक द्वारा जांच की सुनवाई में आए रिफ्यूजी वकील डेविड मेन ने कहा कि जांच के लिए और आखिर में अभियोग चलाकर अभियोग लगा पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में कई रुकावटें हैं।
For any remedies in relation to those matters to proceed, essentially it would require the Attorney General, the Australian Attorney General, to allow those investigations and potential prosecution to occur. So we have a problem here, is that there may well be on the statute books serious violations of domestic law, not only international law, but domestic law in Australia. And yet the gatekeeper for whether there's a proper investigation under the ordinary protections of Australian law is the Attorney General. And that is, you know, that is a serious problem here, given the potential conflict of interest that arises.
कैनबरा के ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस एंड जस्टिस में डॉक्टर एमा लार्किंग पोस्ट डॉक्टरेट कर रही हैं। वो कहती हैं कि पीपल स्मगलर्स को कुछ भुगतान करना ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय आबंधों के विरुद्ध है और खासतौर पर भूमि समुद्र या हवाई माध्यम से प्रवासियों के कबूतरबाजी पर संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता के विरुद्ध है। डॉक्टर डार्किन ने सेनेट जांच सुनवाई को कहा कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र के इस प्रोटोकॉल का एक हस्ताक्षरित देश है तो वो प्रोटोकॉल के प्रति जवाबदेह बनता है।
If Australian authorities arrange for the return of asylum seekers to Indonesia in pursuit of domestic policy aims, this may in itself constitute migrant smuggling. The protocol requires parties to criminalise migrant smuggling and associated activities, including participating as an accomplice in or directing others to smuggle migrants. The alleged actions of Australian authorities clearly fall within the behaviour targeted here. They are also inconsistent with Australia's obligation under the protocol to promote cooperation among states to prevent migrant smuggling while protecting the rights of those who are smuggled.
वो छह इंडोनेशियंस जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन अधिकारियों से पैसा लेने की बात मानी है उन पर लोगों के कबूतरबाजी करने का आरोप लगाया गया है। ऑस्ट्रेलियन कानून के तहत एक और चाहे अधिकारियों के लिए जनहित की कुछ ढाल बनी रह सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि यही ढाल अंतर्राष्ट्रीय और इंडोनेशियन कानून के तहत भी लागू हो पाए। एंथनी कैसिमेटिस का कहना है कि अगर इंडोनेशिया इन ऑस्ट्रेलियन नागरिकों के विरुद्ध आपराधिक जांच शुरू करने का निश्चय कर ले तो फेडरल सरकार की इस अस्पष्टता से गंभीर अनुमान या तात्पर्य निकल सकते हैं।
The Indonesian government took an equally serious approach to this and did actually commence criminal proceedings. The Australian government would be compelled, in a sense, to protect its officials by publicly acknowledging the conduct in order to ensure the immunity under international law if a prosecution proceeded in Indonesia. And so I think the position of neither confirming nor denying would essentially leave the officials exposed if Indonesian proceedings were to continue. So
claiming public interest immunity in this context in the Australian Parliament, in a Senate inquiry, is in fact putting at risk the ability to protect the government's own officers.
If they're acting under instructions and those instructions are not being confirmed, and if that's involved criminal conduct under the laws of another state, then yes, potentially.
Federal Sarkar tathakahit on water matters ke bare mein vistrit jankari dene se inkar kar rahi hai aur is par dridh hai ki Australia dwara uthaye kadam gharelu और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के साथ मेल खाते हैं उसी दिशा में हैं।